16 जून दिन शुक्रवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में टाडा अदालत ने सुनाया फैसला।
अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, ताहिर करीमुल्ला, इनके अगेंस्ट सारे आरोप सिद्ध हुए हैं। जो ये थे आरोप के, उन्होंने कंस्पायरेसी करके बॉम्ब ब्लास्ट में उनका पूरा रोल था।
जम्मू कश्मीर के कुलगांव में चरमपंथियों के साथ सेना की मुठभेड़।
ये इंसानियत का खून है, कश्मीरियत का खून है।
और विवेचना में आज बात होगी आरएसएस के तीसरे सरसंघ चालक बाला साहब देवरस की।
बाला साहब देवरस पूर्णतः राजनीतिक प्राणी थे, लेकिन इस अर्थ में राजनीतिक नहीं थे कि सत्ता के लिए वो स्वयं अपनी दावेदारी करते हों।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। मुंबई में साल 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष टाडा अदालत ने आज 6 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दोषी ठहराए गए लोगों में अबू सलेम और मुस्तफा दौसा शामिल हैं। कोर्ट ने करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को भी दोषी ठहराया है। अदालत कुल 7 लोगों के खिलाफ सुनवाई कर रही थी, इनमें से अब्दुल कयूम को बरी कर दिया गया है। मुंबई धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाके में 2 दिन से जारी बंद का जनजीवन पर असर हुआ है। बंद के कारण फंसे पर्यटकों को पुलिस ने आज बागडोरा एयरपोर्ट और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर रवाना किया। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बंद को गैरकानूनी करार दिया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दार्जिलिंग से रवि प्रकाश।
बंद समर्थकों ने आज सुबह दार्जिलिंग से 50 किलोमीटर दूर मिरी के एक स्कूल और पहलगांव के पंचायत कार्यालय में आग लगा दी। गोरखाडैन राज्य के निर्माण की मांग कर रहे लोगों ने कालिम्पोंग के पास थारखोला में फॉरेस्ट दफ्तर, लोहड़ामा में हेल्थ सेंटर और रायबिक में पनबिजली परियोजना के एक दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया है। बंद समर्थकों ने करसियांग में दार्जिलिंग सिलीगुड़ी मार्ग पर जाम लगाकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने दार्जिलिंग के कुछ इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहाड़ के लोगों से शांति की अपील की है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने इसे गोरखालैंड की अंतिम लड़ाई करार दिया है।
जानकारी दे रहे थे रवि प्रकाश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूस की कथित दखल के मामले की जांच के मद्देनज़र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम को निर्देश दिया गया है कि वो इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को संभाल कर रखें। रूस के कथित दखल को लेकर कई जांच चल रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले से जुड़े तमाम आरोपों से इनकार करते रहे हैं। रूस की सेना का कहना है कि बीते महीने सीरिया में रूसी सेना के हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के कई चरमपंथी मारे गए। इनमें इस्लामिक स्टेट के कई वरिष्ठ लड़ाके शामिल हैं। सेना के मुताबिक हमले में रक्का में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को निशाना बनाया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी थे या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष कर रहे अमरीका की अगुवाई वाले गठबंधन का कहना है कि वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने मीडिया को जानकारी दी है कि वो तथ्यों की जानकारी कर रहे हैं। अबू बकर अल बगदादी के सफाई से जुड़ी सूचना की मेरे पास 100% पुष्टि नहीं हुई है। ये थे रूस के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक के मूसल में इस्लामिक स्टेट के कब्जे में 1,00,000 से ज्यादा आम लोग हो सकते हैं जिन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इराक की सेना ने मूसल पर अधिकार हासिल करने के लिए बीते साल नवंबर में अभियान शुरू किया था। रिपोर्टों के मुताबिक फिलहाल इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पुराने शहर के एक हिस्से तक सीमित रह गए हैं। इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के प्रतिनिधि ब्रूनो गेडो ने जनेवा में जानकारी दी।
We know that ISIS moved them with them as they left Zanjili and other locations where the fighting was going.
हम जानते हैं कि जंजिली और दूसरी जगहों को छोड़ते वक्त इस्लामिक स्टेट के लड़ाके उन्हें अपने साथ ले गए। इन आम लोगों को पुराने शहर में मानव ढाल की तरह रखा गया है। वहाँ बमुश्किल खाने का सामान बचा है। ये आम लोग बेहद खराब स्थिति के बीच में रह रहे हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि के शब्द। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। भारत प्रशासित कश्मीर में आज एक बार फिर चरमपंथियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके। प्रदर्शनकारियों पर सेना की कार्रवाई के दौरान कम से कम एक युवक मारा गया और सेना के मुताबिक मुठभेड़ में लश्कर के दो चरमपंथी भी मारे गए हैं। घाटी में पुलिसकर्मियों पर हमले, प्रदर्शनों और हड़तालों की वजह से आम जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। श्रीनगर से सुनिए रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
ये घटना श्रीनगर से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर दूर बिजबिहाड़ा इलाके में उस वक्त घटी जब लोगों ने चरमपंथियों के विरुद्ध सेना और पुलिस के साझे ऑपरेशन में बाधा डालकर चरमपंथियों को बचाने का प्रयास किया। लोगों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान फोर्सेस पर पथराव किया, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की और पैलेट गन का प्रयोग किया। दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनमें से अशरफ नाम का युवा मारा गया। सेना के मुताबिक मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का कुख्यात चरमपंथी जुनैद मत्तू साथी समेत मारा गया है। इस बीच कल श्रीनगर के रंगरेट इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक और युवा मारा गया। कल ही श्रीनगर और कुलगाम जिलों में दो अलग अलग घटनाओं में संदिग्ध बंदूकधारियों ने दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। किसी भी चरमपंथी ग्रुप ने हत्याओं की जिम्मेदारी नहीं ली है, तहम पुलिस महानिदेशक शेषपाल वेद ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया है।
ये इंसानियत का खून है, कश्मीरियत का खून है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री अपने जियोपॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यहाँ के लोगों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को एज ए पान इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस बीच प्रदर्शनों को रोकने के लिए इंटरनेट की सुविधा स्थगित कर दी गई है और अलगाववादियों ने आम नागरिकों को मारे जाने के विरुद्ध कल घाटी में बंद का आह्वान किया है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
1993 के मुंबई धमाकों के मामले में मुंबई की टाडा अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए अबू सलेम समेत 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद CBI के विशेष वकील दीपक सालवे ने क्या कहा, हम सुनवाएंगे आपको, लेकिन पहले कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं श्रीनगर से रियाज मसरूर को। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चरमपंथियों के साथ सेना की मुठभेड़ वाली खबर आपने सुनी, अभी इस खबर पर कुछ अपडेट के साथ रियाज मसरूर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।
जी, ये घटना जो है ये कुलगाम जिले में नहीं, अनंतनाग जिले में अच्छाबल इलाका है। अच्छाबल वो बेसिकली एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन अच्छाबल के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वहाँ के SHO, वो गश्त पर थे अपनी पार्टी के साथ, तो उस पार्टी पर जो है चरमपंथियों ने हमला किया दो तरफ से, सड़क के दो तरफ से। तो कुल मिलाकर अभी तक जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और SHO जो इंस्पेक्टर हैं फेरोज उनका नाम है, वो भी इसमें मारे गए हैं।
जी, बहुत शुक्रिया रियाज मसरूर, कार्यक्रम में आपने ताज़ा जानकारी पहुंचाई हम तक। और हम एक बार फिर लौट रहे हैं मुंबई धमाकों से जुड़ी खबर की ओर। 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, मुंबई की टाडा अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाया है, अबू सलेम समेत 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। और इस फैसले के बाद CBI के विशेष वकील दीपक सालवे ने संवाददाताओं को अदालत के बाहर संबोधित किया, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
7 आरोपी थे मुस्तफ़ा डोसा, अबू सालेम, करीमुल्ला, देन ताहिर मर्चेंट, कयूम, रियाज सिद्दीकी एंड ताहिर। ये जो पहले 4 आरोपी जो बताए गए थे, अबू सालेम, मुस्तफ़ा डोसा, ताहिर एंड करीमुल्ला, इनके अगेंस्ट सारे आरोप सिद्ध हुए हैं। जो ये थे आरोप के उन्होंने कंस्पायरेसी करके बॉम्ब ब्लास्ट में उनका पूरा रोल था, ये साबित हुआ। जैसे जिनके रोल है और 120B के अंडर जितने भी लोग आगे हैं उनके खिलाफ हो सकता है कि फांसी की सजा मांगी जाए। अबू सालेम के लिए कंडीशन है कि 25 साल से ज्यादा सजा नहीं कर सकते, उसके ऊपर बहस होगी।
ये थे CBI के वकील दीपक सालवे। वहीं अबू सलेम की वकील सबा कुरैशी ने मुंबई में हमारे सहयोगी अश्विन अघोर को बताया कि वो इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेंगी। बहरहाल 1993 के मुंबई धमाकों का ये पूरा मामला है क्या, समझने के लिए मैंने बात की BBC संवाददाता जुबैर अहमद से।
6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद हिंसा हुई थी पूरे देश में, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। उसके बाद 12 मार्च 1993 के दिन सिलसिलेवार बम धमाके हुए 13 जगहों पर मुंबई में एक ही साथ लगभग, और ये बहुत ही खतरनाक किस्म के बम धमाके थे क्योंकि इसमें RDX उसका इस्तेमाल हुआ था। 257 के करीब लोग मारे गए थे, 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। और इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ, कई लोग इनके खिलाफ इल्ज़ाम आए, اور جو چار پانچ خاص نام تھے اس میں جو بالی ووڈ کے ایکٹر سنجے دت کا نام آیا، ابو سالم، داؤد ابراہیم جو دیش میں نہیں ہے اس کا نام آیا، اور یعقوب میمن جسے 2007 میں جو گلٹی پایا گیا اس کے بعد اس کو پھانسی دی جا چکی ہے، میمن بردرس اور بھی ان کے بھائی بھی شامل تھے۔ یہ میمن بردرس وغیرہ تو وہیں کے رہنے والے تھے ممبئی کے، داؤد ابراہیم ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی ممبئی کا رہنے والا تھا۔ تو ان کے بارے میں سی بی آئی نے جب انکوائری کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کنسپریسی بڑی زبردست بنائی تھی کہ بدلہ لیں گے، یہ جو بابری مسجد گرائی گئی ہے اس کے بعد مسلمانوں کو مارے گئے ہیں اس کا ہمیں بدلہ لینا ہے۔ داؤد ابراہیم جو سب سے بڑا سرغنہ مانا جا رہا تھا وہ، اس کے بارے میں بھارت سرکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں پاکستان کا آئی ایس آئی بھی اس میں انوالو تھا، کیونکہ اس کا جو اسکیل تھا وہ بہت ہی بڑا تھا اور یہ جو لوگ ہیں آپس میں خود کر کے نہیں بنا سکتے تھے، ظاہر باہر سے مدد ملی تھی۔ اس کے بعد جب مقدمہ سی بی آئی نے عدالت میں آیا، اسپیشل ٹاڈا اس وقت لا ہوتا تھا جو بعد میں ہٹا دیا گیا، لیکن ٹاڈا جو اس نے ایک اسپیشل کورٹ بنایا، پہلا مرحلہ ختم ہوا 2007 میں جب سنجے دت، یعقوب میمن اور اس طرح کے اور لوگ جو ہے وہ گلٹی پائے گئے تھے اور یعقوب میمن کو پھانسی دے دی گئی تھی اس کے بعد، اور 100 لوگوں کو پہلے مرحلے میں جو گلٹی پائے وہ اپنے آپ میں بہت ایک طرح سے لینڈ مارک ججمنٹ تھا۔ اور دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا تھا اس کا آج جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور آج ابو سالم کے خلاف جو ہے کو گلٹی پایا گیا ہے، اور منڈے کو، سوموار کو جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے اس کے خلاف وہ سنائی جائے گی۔
یہ بتائیے کہ 1993 سے 2017 تک آ گئے اور دو حصوں میں بڑے فیصلے سنائے گئے، تو یہ سازش جو تھی یہ کتنی بڑی تھی اور اس میں اتنا وقت لگ گیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟
شروع میں ممبئی پولیس نے خود ہی جانچ اس کی شروع کی تھی، اور یہ اتنا بڑا کنسپریسی تھا کہ ممبئی پولیس کے بس کی بات نہیں تھی، اس کے بعد سی بی آئی کے حوالے کیس کو کیا گیا، اس میں کچھ وقت نکل گیا۔ سی بی آئی کو بھی سمجھ میں آیا کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ دیش سے باہر ہیں، جیسے کہ ابو سالم خود، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایک وہ ڈوسا، یہ بھی یو اے میں تھا، تو ان لوگوں کو واپس لانا دیش کے اندر، تو ان سب کارنوں سے کافی سمے لگا۔
ایک آخری سوال سنکشیپ میں جواب دیجیے گا، آج فیصلہ آیا ہے، سوموار کو سزا سنائی جائے گی، اس کے بعد مانا جائے کہ یہ معاملہ پوری طرح سے بند ہو جائے گا؟
اس میں جو سی بی آئی کر پائی ہے کہ اتنے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ لوگ انوالو تھے، کچھ لوگ اس نیٹ سے باہر بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے نام نہیں آ سکے، اور سب سے بڑا نام داؤد ابراہیم وہ تو ابھی دیش میں آئے نہیں، اس اور ایبسنشیا میں بھارت میں تو فیصلے نہیں سنائے جاتے ہیں، تو اس کو آنا یہاں پر ہے کسی نہ کسی سے، اس کو یہاں لا کر اس کے خلاف جب عدالت میں کاروائی ہوگی اور اس کو جو بھی عدالت فیصلہ سنائے گی اس کے بعد ہی اس کیس کا خاتمہ سمجھا جائے گا۔
1993 کے ممبئی دھماکوں کا پورا معاملہ بتا رہے تھے بی بی سی سنواد داتا زبیر احمد۔
بی بی سی انڈیا بول۔ کھیتی کسانی میں لگاتار گھاٹا، قرض کا بڑھتا بوجھ اور آتم ہتیا کرتے کسان، کیا آدھونک بھارت میں کھیتی ہر کی کسی کو چنتا نہیں؟ مدھیہ پردیش میں پولیس گولی باری میں کسانوں کی موت کے بعد کیا نریندر مودی سرکار جاگے گی؟ یہی ہے اس بار بی بی سی انڈیا بول کا وشے۔ کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شنیوار 17 جون کو مفت فون کریں 1811-7000 اور 1800-102-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
دن بھر سن رہے ہیں آپ سندیپ سونی کے ساتھ، آج شکروار ہے اور ہر شکروار آپ سنتے ہیں ویویچنا۔ بھارت کی راجنیتی میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی مہتوپورن لیکن ویواداسپد بھومیکا رہی ہے، لیکن آر ایس ایس کو ناگپور کے موہیتے کے باڑے سے باہر نکالنے کا شرے اگر کسی کو دیا جاتا ہے، کسی کو دیا جا سکتا ہے، تو وہ ہیں سنگھ کے تیسرے سرسنگ چالک بالا صاحب دیورس۔ ان کے کاریکال کے دوران دیش کے اندر کئی ایتیہاسک گھٹنائیں ہوئیں، جن میں بہار آندولن، آپاتکال کی گھوشنا، جنتا پارٹی کی جیت، ایودھیا آندولن اور بابری مسجد کا ودھونس شامل ہے۔ بالا صاحب دیورس کی 21ویں پونیہ تیتھی پر ان کے جیون پر نظر دوڑا رہے ہیں ریحان فضل آج کی ویویچنا میں۔
5 جون 1973 کو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے دوسرے سرسنگ چالک گرو گولولکر کے دیہاوسان کے بعد سبھی سوئم سیوکوں کو سمبودھت ان کے 3 سیل بند لفافے کھولے گئے۔ پہلے لفافے میں ایک پتر تھا جس میں انہوں نے اچھا پرکٹ کی تھی کہ ان کے بعد بالا صاحب دیورس کو آر ایس ایس کا سرسنگ چالک بنایا جائے۔ कोलवलकर की तरह देवरस आरएसएस में देर से नहीं आए थे। 12 साल की उम्र में ही वो पहले सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगवार के प्रभाव में आ गए थे। कहा यह जाता है कि अब तक आरएसएस के जितने भी सरसंघ चालक हुए हैं उनमें बाला साहब देवरस का झुकाव राजनीति की तरफ सबसे ज्यादा था। राम बहादुर राय इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और संघ परिवार से भी जुड़े रहे हैं।
बाला साहब देवरस का जो पिंड था, उनके व्यक्तित्व का जो केंद्र था, वो पॉलिटिकल था। कहना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई का जो अर्थ उन्होंने समझा था, जिसलिए वो आरएसएस में आए थे, और कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि संघ के संस्थापक को उन्होंने जिस तरह से समझा था, उससे उनको पढ़ने या उनको सुनने या उनको जानने के बाद मेरा मत भी है कि वे पूर्णतः राजनीतिक प्राणी थे, लेकिन इस अर्थ में राजनीतिक नहीं थे कि सत्ता के लिए वो स्वयं अपनी दावेदारी करते हों।
हेडगवार की तरह बाला साहब देवरस को भी उनकी व्यवहारिकता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक बार कहा था,
गुरु गोलवलकर कहते थे कि जिन्होंने डॉक्टर हेडगवार को नहीं देखा हो उन्हें बाला साहब को देख लेना चाहिए। एक बार गुरुजी तांगे में बैठकर जा रहे थे और बाला साहब तांगे को रास्ता बताते हुए नीचे चल रहे थे। उनको पैदल चलता देख गुरुजी ने कहा कि असली सर संचालक तो पैदल चल रहे हैं और नकली सर संचालक तांगे में बैठकर चल रहे हैं।
अधिकतर आरएसएस नेताओं की तरह उच्च जाति से आने के बावजूद देवरस सामाजिक समरसता की वकालत किया करते थे। एक बार उन्होंने पुणे में भाषण देते हुए कहा था कि अगर छुआछूत पाप नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। बाला साहब देवरस के नाती अरविंद माडिकर बताते हैं।
8 मई 1974 का जो उनका वसंत व्याख्यानमाला का जो सुप्रसिद्ध भाषण है अनटचेबिलिटी के खिलाफ वाला, तो उस समय तो कोई इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह नहीं थी, तो 8-10 दिन बाद वो अखबारों में आया, बड़ी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इन द वर्ल्ड इज रॉन्ग एंड इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो ये भाषण 8 मई 1974 के बाद मान लीजिए 10-12 दिनों में, जब हमारी कोई बातें हो रही थी, हम लोग स्कूल में, उस समय छुट्टियां भी थी लेकिन हमारे वर्ग वगैरह चलते थे, तब हमारे सर ने ये बताया था कि देखिए आदमी की सोच कैसी होती है, किस प्रकार होती है, और ये हमको समझना पड़ेगा और ये हमको आचरण में लाना पड़ेगा। तब शायद मुझे पहली बार ज्ञात हुई, मैं 10वीं कक्षा के हूँगा, तब मुझे पता चला कि हमारा सौभाग्य है कि किस घर में हमारा जन्म हुआ है और कितना उत्तुंग इनका व्यक्तित्व है।
देश की राजनीति में छात्रों का पहले पहल इस्तेमाल बाला साहब देवरस ने 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के दौरान किया। उसके बाद से भ्रष्ट और नाकारा सरकारों से इस्तीफा दिलवाने के लिए छात्रों को सड़क पर उतारकर आंदोलन चलवाना एक सर्वस्वीकृत दस्तूर बन गया। इसका अगला प्रयोग बिहार में किया गया।
ये 74 फरवरी वगैरह के आसपास की बात है, जब जेपी दिल्ली से आए तो उन दिनों एक छोटी सी खबर अखबारों में छपी थी कि जेपी की लंबी बातचीत बाला साहब देवरस से हुई है। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि बाला साहब देवरस से जो आपकी बातचीत हुई है, हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई। तो जेपी ने पहली बात तो ये कही कि बाला साहब देवरस से मेरी ये पहली मुलाकात, लेकिन मैं उनसे प्रभावित हूँ और उनसे मैंने पूछा कि आप हिंदुत्व क्या है यह बताइए, और उसका जो उन्होंने जवाब दिया उससे मैं प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदू वह है जो हिंदूपन का अभिमान छोड़ दे, और हिंदुत्व धर्म नहीं है, हिंदुत्व राष्ट्रीयता है। तो हम लोगों को लगा कि ये जेपी और बाला साहब देवरस में एक समझदारी है, वो विकसित हुई है।
संघ परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य भी मानते हैं कि 1974 के बिहार आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बढ़ चढ़कर भाग लेना बाला साहब देवरस के बिना संभव नहीं हो सकता था।
1974 का आंदोलन चल पड़ा जिसमें संघ इत्तेफाक से शान लिया गया, हमारे राम बहादुर के नाम मिसा वारंट जारी कर दिया गया। मैं तो आंदोलन में बहुत पेरिफेरी में बाहर था एक तरह से, लेकिन जब अब मिसा वारंट हो गया तो मैं शाखा जा नहीं सकता था, तो आंदोलन में लग गया। जयप्रकाश जी से जाकर मिलाया, वो भी आंदोलन में आ गए। तो अब इसके बाद संघ के कई लोगों को लगा जरूर कि ऐसा न हो कि इसने अपने मन से किया है, तो अंत में बाला साहब देवरस ने जब वो बिहार के दौरे पर आए थे लगभग समझे अप्रैल मिडल में, तब तक आंदोलन उफान पर था, तब उनको समझ में आया कि आंदोलन में सबकी सहभागिता है। उन्होंने स्टैंड लिया लेकिन कि संघ का स्वयंसेवक भी जागरूक नागरिक है, संवेदनशील नागरिक है, तो समाज में हो रहे बदलाव और समाज के तकाजों को अनसुना कैसे कर सकता है।
1975 में आपातकाल के दौरान बाला साहब देवरस को गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल में रखा गया। इसी दौरान आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगाया गया। जेल में रहने के दौरान देवरस ने इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखे जिसकी बाद में बहुत आलोचना भी हुई। मधुलिमय ने अपनी किताब जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट में लिखा,
देवरस ने इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव याचिका पर अपील जीतने पर बधाई दी थी। उन्होंने अपने आप को जेपी आंदोलन से दूर करते हुए इंदिरा गांधी से अनुरोध किया था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा प्रतिबंध हटा लें। इस मामले में विनोबा भावे से भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था।
राम बहादुर राय बताते हैं कि बाला साहब देवरस का ये कदम एक रणनीति के तहत था, लेकिन इसे आरएसएस के सामान्य कार्यकर्ताओं ने पसंद नहीं किया था।
उन दिनों जिन दिनों ये पत्र लिखा गया है उन दिनों अंडरग्राउंड मूवमेंट में जो लोग भी थे उन सबकी ये कोशिश थी कि इंदिरा गांधी किसी तरह से चुनाव के लिए तैयार हो जाए। तो चुनाव के लिए तैयार होने के लिए अगर आरएसएस को कहीं माफ़ी भी मांगनी पड़े तो उसके लिए भी उन लोगों ने मन बना लिया था ताकि इंदिरा गांधी चुनाव के लिए तैयार हो। दिसंबर की 29 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी से एक फिरोज शाह रोड पर मैं मिला। उन दिनों वो हाउस अरेस्ट थे। मैंने वाजपेयी जी से पूछा कि आपकी ओम मेहता से भेंट हुई है, ओम मेहता शायद आपसे मिलने आए थे। तो वाजपेयी जी ने मजाक में कहा कि ओम मेहता बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनसे मिलने गया था। तो मैंने कहा कि हम लोग जो अंडरग्राउंड मूवमेंट में हैं उनके लिए इस बातचीत का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा कि ओम मेहता ने मुझे एक लंबी लिस्ट दी है और ये कहा है कि विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जो रेलवे की पटरियां उखाड़ी गई हैं, हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ये विद्यार्थी परिषद के लोगों ने किया, तो आप लोग माफ़ी मांगिए। बाला साहब देवरस की चिट्ठी पर भी आरएसएस में दो तरह की प्रतिक्रिया थी। एक जो टैक्टिकल लाइन का समर्थन करते थे वे मानते थे कि ये चिट्ठी ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से या जो लोग इस लड़ाई को एक सैद्धांतिक लड़ाई मानते थे वो उनको इस बात का अफसोस था कि बाला साहब देवरस ने ऐसी चिट्ठी लिखी।
बाला साहब देवरस के कार्यकाल के दौरान ही आरएसएस में मुसलमानों के प्रवेश का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में विचारार्थ आया था, लेकिन वो खारिज हुआ और देवरस संघ की परंपरागत सोच को नहीं बदल पाए।
मैं इसका साक्षी हूँ। देखिए 1975 के इमरजेंसी के दौरान मुस्लिम नेता और आरएसएस के नेता साथ साथ जेलों में थे और आपस में एक सौहार्द बना था, और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो शाही इमाम वगैरह भी आरएसएस के दफ्तर में जाते थे और मान लीजिए शाम के उनके नमाज का समय है तो वहाँ नमाज पढ़ते थे। इस तरह का एक सौहार्द बना था और मुरारजी भाई की ये सलाह थी आरएसएस को कि आप आरएसएस को यानी संघ को हिंदुओं तक सीमित करने के बजाय आप उसको ओपन कर दीजिए, जिसमें मुसलमान भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, दूसरे लोग भी आ सकते हैं, गैर हिंदू भी आ सकते हैं। तो 1977 की जो प्रतिनिधि सभा हुई इस सवाल पर विचार हुआ, तो इस पर बहुत बहस हुई और उस बहस में बाला साहब देवरस का रुख ये था कि हमको ओपन करना चाहिए, लेकिन बाला साहब देवरस के जो प्रमुख सहयोगी थे जैसे यादवराव जोशी, मोरोपंत पिंगले, दत्तोपन ठेंगड़े, मैं उस प्रतिनिधि सभा में था। उसमें जब बाला साहब के अलावा सभी इसके विरोध में जब खड़े हो गए तो उन्होंने अपने समापन में इस अध्याय को बंद किया। अगर बाला साहब देवरस पर निर्णय छोड़ा जाता तो संघ की शाखाओं पर वो सबको यानी उसको खुला छोड़ देते।
आडवाणी की रथ यात्रा भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं था। ये फैसला बहुत सोच समझकर बाला साहब देवरस के नेतृत्व वाले आरएसएस ने लिया था। प्रलय कानून को अपनी किताब आरएसएस ट्विस्ट विद पॉलिटिक्स में लिखते हैं।
राम जन्मभूमि और रथ यात्रा की वजह से ही संघ परिवार भारतीय राजनीति के कार्यक्षेत्र में घुस पाया, जिसमें कि वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया था। अब ये उत्तर भारत के शहरी इलाकों के कुछ परंपरागत क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने सीमित उच्च जाति आधार को भी विस्तार देने की कोशिश कर रहा था। यह भी सच है कि मंडल का विरोध करने वाले उच्च जाति के युवा भी राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में आ खड़े हुए थे।
भारतीय जनता पार्टी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे या न करे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के संबंधों में दबदबा हमेशा आरएसएस का ही रहा है।
1977 में यह तय हो गया। गुरुजी का जो स्थान था वह दूसरे तरह का था, यानी पद में भी, विद्वता में भी और व्यक्तित्व में भी वो बहुत बड़े थे, तो उनके सामने अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जो है वो एक तरह से स्कूल के विद्यार्थी की तरह से होते थे। लेकिन जब बाला साहब आए तो बाला साहब करीब करीब समकक्ष थे और संगठन के व्यक्ति थे। तो लालकृष्ण आडवाणी ने उनके सरसंघ चालक बनने के बाद एक इंटरव्यू में यह आशंका भी व्यक्त की कि हो सकता है कि ये रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करें, लेकिन अनुभव यह है कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और बाला साहब जो है वो पहली बार दिल्ली आए, तो उनको स्टेशन पर लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गए, लालकृष्ण आडवाणी गए, पूरा मंत्रिमंडल के जो जनसंघ घटक के लोग थे वो गए, सिकंदर वक्त भी गए। तो कैबिनेट की बैठक में मुरारजी देसाई ने यह सवाल पूछा, हमारे मंत्रियों को आने जाना चाहिए, तो सिकंदर वक्त ने सवाल खड़ा किया कि वो जाने में हर्ज क्या है। लेकिन उस घटना ने, यानी बाला साहब को की आगवानी में मंत्रिमंडल के लोग गए हैं उस घटना से, और फिर रामलीला मैदान में जो जब उनका स्वागत हुआ तो उसमें कतार में जो जनसंघ घटक के मंत्री और नेता बैठे हुए थे, तो उससे ये साबित हो गया कि वो सरसंघ चालक हैं और ये स्वयंसेवक, ये है रिश्ता।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार। राखी शर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं, क्या हलचल है खेल के मैदानों में?
संदीप जी, सबसे पहले मैं बैडमिंटन की खबर के साथ शुरुआत करूंगी, जहां इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में आज भारत के एचएस प्रणॉय ने सभी को हैरान करते हुए बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने मौजूदा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चीन के चेन लॉन्ग को 21-18, 16-21, 21-19 से मात देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दबाव भरे इस मैच में उन्होंने आक्रामक खेल दिखाया जो उनकी जीत की बड़ी वजह बनी। विश्व नंबर 25 प्रणॉय इससे पहले सभी तीन मौकों पर इस चीनी खिलाड़ी से हार चुके थे। किसी सुपर सीरीज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एचएस प्रणॉय पहली बार पहुंचे हैं। वहीं एक और अन्य भारतीय खिलाड़ी के श्रीकांत इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे खिलाड़ी जू वे यांग को 21-15, 21-14 से हराया। सेमीफाइनल में अब उनका सामना कोरिया के सनवॉन से होगा। और हॉकी का जहां तक सवाल है, तो पहले मैच में जीत हासिल करने वाली भारतीय मेंस हॉकी टीम हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स के दूसरे मैच में कल कनाडा से भिड़ेगी। विश्व रैंकिंग में छठे नंबर पर काबिज भारतीय टीम के लिए इस 11वीं रैंक की टीम को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल्स की शुरुआत से पहले अपने दो अनुभवी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह और उत्थप्पा के बाहर होने से भारतीय टीम में इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव था।
खेल समाचार सुने आपने राखी शर्मा से, और थोड़ी देर में भारत में बजने वाले हैं रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर सुनेंगे वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में संदिग्ध चरमपंथियों के हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में एक विशेष टाडा अदालत ने आज अबू सलीम समेत 6 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के इलाके में 2 दिन से जारी बंद का जनजीवन पर असर हुआ है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत, भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।